मेरे अपने प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 2 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं राजेश्वर वर्मा, आप पटना बिहार से हैं, विकास कुमार बौद्ध, आपके सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश से, स्थान का नाम नहीं है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, और पप्पू यादव, आप समस्तीपुर बिहार से हैं। तो राजेश्वर, विकास और पप्पू, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आप आइए हम न्यूज एनालिसिस पर आते हैं और न्यूज एनालिसिस से पहले थोड़ी सी बात प्री एग्जाम की तैयारी को लेकर। मित्रों मुझे मालूम है कि आप लोगों में से जो बड़ी इत्मीनान से तैयारी में लगे होंगे वो तो लगे ही हैं, लेकिन आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होंगे कि उस तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे जिस तरीके से तैयारी करने के बारे में आप लोगों ने सोच रखा था। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, आने जाने की व्यस्तता, नौकरी से छुट्टी न मिल पाना, तबीयत का खराब होना, गर्मी ज्यादा पड़ना, घर में मेहमानों का आ जाना, बहुत कुछ भी कारण हो सकते हैं, कारण तो होते ही हैं। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, खासकर जो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई बात है। देखिए जो प्री एग्जाम है, याद रखिए ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस मायने में कि आप देखिए कि तथ्य हैं, तथ्यों का जमावड़ा आपको दिया गया, ऑप्शन जो दिए गए हैं, जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वो क्या है, वो तथ्यों का जमावड़ा ही है, या यूं कह लीजिए कि ऊन के धागों को उलझा दिया गया है। बस ऊन के धागों को, 4 धागे हैं, उलझा दिए गए हैं वो धागे, और आपको उन धागों को सुलझा कर जो सही ऊन का धागा है वो निकाल कर देना है कि ये सही ऊन का धागा है। यानी कि आपके दिमाग में ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि ऊन का धागा कौन सा है। तो आपको नहीं लगता कि यह दिमाग की स्पष्टता की परीक्षा है कि आप उस उलझन से अपने आप को कैसे निकाल सकते हैं। मित्रों यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप सोच करके देखें कि किसी भी कारण से अगर आप अभी परेशानी महसूस कर रहे होंगे, मैं स्थायी परेशानी की बात कर रहा हूं, टेम्परेरी परेशानी की बात नहीं, यदि आप परेशानी महसूस कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि जिस स्पष्टता की आपके दिमाग को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है आप उसे वही नहीं दे रहे हैं, ये तो उल्टा काम हो रहा है। मित्रों सच पूछिए तो अब जबकि लगभग 1.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, प्री एग्जाम की जो एक समझ के स्तर की तैयारी होती है वो आपकी हो चुकी है। समझ के स्तर की यह है कि खासकर आप 4 सब्जेक्ट्स उठाइए जिन्हें मैं प्री या टोटल सिविल सर्विस जनरल स्टडीज का पिलर्स कहता हूं। आपके उसमें एक ज्योग्राफी है, उसमें दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है, तीसरा सब्जेक्ट उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, और 4th उसमें हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा छोड़ दें, हिस्ट्री में भी कुछ अंश तक तो ये बात है, लेकिन बाकी जो 3 पिलर्स हैं वो तो पूरी की पूरी तरह से समझदारी पर डिपेंड करते हैं। आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, आप चीजों को रट करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, विषय को समझ कर ही कर सकते हैं। और मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर आप एक सिंसियरली तैयारी कर रहे थे, आपने फैसला किया था कि 2017 के एग्जाम में मुझे अच्छी तैयारी करके बैठना है, तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी, यानी कि विषय को आप समझ चुके होंगे। तो अब वक्त किस बात का है, केवल यूं कह लीजिए कि आपका मकान बन चुका है, पलस्तर हो चुका है, सफाई हो चुकी है, अब आपको रोज झाड़ू लगाना है ताकि गंदा ना हो, दैट्स ऑल। हल्का फुल्का रिवीजन करते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, न्यूज सुनते रहिए, जो आपके मेंस की जो जरूरतें हैं या डेली की जरूरतें हैं इनसे अपने को विड्रॉ मत कीजिए, मस्त रहिए क्योंकि आप समझ चुके हैं। हां अगर समझ वाली बात में कुछ कमी है, कमजोरी है, तो फिर बात अलग है। तो इसलिए मित्रों मेरा अर्ज है, मेरी सलाह है कि प्लीज आप अपनी मानसिक उलझन को स्टॉप कीजिए, उसे स्थिर बनाइए, मन में प्रसन्नता का भाव लाइए, और जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आए हों, हाँ, उन पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में अपने को लगाइए। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये तो आप अपने दिमाग के रिदम को उसके रिदम से मैच कर रहे हैं। तो मित्रों, ये आज के प्री एग्जाम के बारे में। अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों, पहली खबर आपने सुनी, पाकिस्तान ने एक बार फिर से, जो उसका लगातार चलता रहता है, उस तरह का हमला किया है, और इसको लेकर के फिर से पूरे देश में रोष है। दो सैनिकों के इस तरह से शव को क्षत विक्षत करना, मतलब लग रहा है जैसे कि वो जानबूझ करके कुछ उकसाने वाली हरकत कर रहा हो, अन्यथा कौन ऐसा करता है मित्रों? उससे मिल क्या जाता है आपको? आप किसी को चिढ़ाना चाहते हैं, किसी को उकसाना चाहते हैं, उत्तेजित करना चाहते हैं, शायद इसीलिए आप ऐसी हरकत करते हैं। पहली खबर थी दोस्तों। दूसरी जो खबर थी भारत और टर्की के संबंध को लेकर थी, और जो तीसरी खबर थी वो श्रम दिवस को लेकर थी। तो मैं श्रम दिवस और भारत टर्की रिलेशनशिप को लेकर के आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, केवल सिविल सर्विस के लिहाज से। फ्रेंड्स, जहां तक श्रम दिवस का सवाल है, देखिए भारत के का जो श्रम परिदृश्य है, जो पूरा का पूरा लेबर सिनेरियो है, वो 1991 के बाद उसमें बहुत बदलाव आया है। और आपको ध्यान होगा कि पिछले दो सप्ताह से जो योजना पत्रिका के मैं आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इससे पहले भी उसमें कुछ आर्टिकल्स आपको श्रम पर प्रोवाइड किए गए हैं कि भारत में जो श्रमिकों का जो सिनेरियो है वो किस तरीके का है। उसमें संगठित श्रमिक, असंगठित श्रमिक, दक्ष श्रमिक, दक्ष कुशल श्रमिक, फिर अकुशल श्रमिक, इन सब को लेकर के काफी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। और वो जो आर्टिकल्स हैं योजना पत्रिका के, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने उसको कितनी तरजीह दी है। जब हम सिविल सर्विस के लिहाज से बात करते हैं तो हम श्रम सुधार की बात करते हैं। लिबरलाइजेशन में श्रम सुधार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और भारत पर लगातार दबाव भी है कि अपने श्रम कानूनों में सुधार करें। उस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्री में भी आ जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं, नंबर वन। दूसरी बात यह है मित्रों कि ये जो भारत में जब हम श्रम की बात करते हैं, श्रमिकों की बात करते हैं, तो याद रखिए वो कहीं ना कहीं वो सोशल वेलफेयर से भी जुड़ा हुआ होता है। वो केवल इकोनॉमिक का विषय नहीं है, मतलब ये मत समझिएगा कि ये केवल अर्थशास्त्र का विषय है तो इस पर प्रश्न केवल जनरल स्टडीज मेंस के थर्ड पेपर में ही पूछे जाएंगे, जैसा कि ज्यादातर आपको मिलेगा भी। इसके जनरल स्टडीज के आपके सेकेंड पेपर में भी पूछे जाने की उतनी ही संभावना है, क्योंकि उस पेपर के नाम में भी जो पांच शब्द हैं उसमें से एक सोशल जस्टिस है, और बिना वेलफेयर के सोशल जस्टिस भारत जैसे देश में तो एटलीस्ट नहीं हो सकता है। तो अब आप देखें कि हमारे यहां कौशल विकास योजना शुरू हुई है, तो ये यही है कि जो अकुशल जो श्रमिक है, कैसे इनके जीवन स्तर को उठाया जाए। श्रमिकों के माइग्रेशन को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं कि लगातार गांव से शहर की ओर श्रमिक आ रहे हैं और शहरों पर लगातार दबाव पड़ रहा है, शहरों की समस्या उससे बढ़ रही है, तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए। झुग्गी झोपड़ियां जो बढ़ रही हैं वो श्रमिकों के आने के कारण ही बढ़ रही हैं, तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं, श्रमिकों से जुड़ी हुई आधुनिक समस्याएं हैं, आधुनिकतम समस्याएं हैं। अब आप देखिए कि जब हम श्रमिकों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग से सच में जो गांव में रहने वाले श्रमिक हैं वो गायब हो चुके हैं, शहरों के श्रमिक आ चुके हैं, जबकि गांव में भी श्रमिकों की स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक गांव के श्रमिकों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और उसके बारे में आप जानते हैं, और वह है राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। उसने वहां के श्रमिकों को एक बहुत बड़ा सहारा दिया है कि एटलीस्ट 100 दिन का काम तो उनके लिए अवेलेबल है। अब ठीक है, उसको लेकर के जो समस्याएं आ रही हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो श्रमिक का जो विषय है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको ध्यान होगा कि इस पर मैंने एक दो बिजनेस स्टैंडर्ड के आपको बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल प्रोवाइड किए थे। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल, उसमें बहुत अच्छे से सारी बातें बताई गई थी, और मैंने उस समय आपको स्पेशली हिदायत दी थी कि यह आर्टिकल आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने रखा हो मित्रों तो यह एक अवसर है जब आप उसे रिवाइज कर लें। एक इस तरह के विस्थापन को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं। यह 2015 का प्रश्न है जो जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में पूछा गया है, आप इसको केवल एक बार सुन लें। तब आप चीजों को समझ सकेंगे, यानी कि सिविल सर्विस का जो करेक्टर है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप आत्मसात कर सकेंगे। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि बड़े क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन है। मलकानगिरी और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक समृद्धि की मुख्य धारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये उसी स्थिति से जुड़ती है कि जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ क्यों आते हैं बेरोजगारी के कारण, नक्सलवाद इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भी आपको एक पॉइंट मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट। और अभी जो नक्सली हिंसा हो रही है उसके संदर्भ में आप इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अपनी तरफ से एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं भारत और तुर्की के रिलेशनशिप को लेकर के। आपको मालूम है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि तुर्की से सीधे कोई प्रश्न पूछा जाएगा भारत के संबंधों को लेकर के, मुझे ऐसा नहीं लगता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो। फिर भी हमें जानना इसलिए चाहिए क्योंकि तुर्की की जो लोकेशन है और उसकी जो जो स्थिति है विश्व राजनीति में वो महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें थोड़ा सा जानना चाहिए ताकि अगर हम कोई ऐसा अपना उत्तर भी लिखें, जैसे मान लीजिए आतंकवाद के खिलाफ भारत क्या कर रहा है, क्या कदम उठा रहा है विश्व आतंकवाद के खिलाफ, तो उसमें तुर्की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो तुर्की की ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि तुर्की किस स्थान पर स्थित है मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और दूसरा है तुर्की के साथ भारत के जो ओल्ड रिलेशन रहे, जो पुराने संबंध रहे हैं। मित्रों, आपको चाहिए कि आप एटलस उठाएं और तुर्की की लोकेशन को देखें तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मिलेगी कि जो तुर्की है वो ईस्ट यूरोप के आप देखेंगे तो आपको ईस्ट यूरोप में मिलेगा और आपको वेस्ट एशिया में मिलेगा। एक तरीके से महाद्वीप के स्तर पर जो तुर्की है वो एशिया में भी है, यूरोप में भी, हालांकि अब वो यूरोप में है लेकिन वो यूरेशिया में, जैसे जो रशिया के साथ होता है लगभग लगभग तुर्की के साथ भी है। आप तुर्की के, आप इधर चले जाएंगे तुर्की के नॉर्थ में चले जाएंगे तो आप बल्गेरिया, जैसे बल्गेरिया है, ग्रीस है यानी कि यूनान है, थेंस है, ये सब आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्किया के पास ही आपको दुनिया के वो देश दिखाई देंगे जिन्हें आप बार बार अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो एशिया के देश हैं, जिसमें आप सीरिया की बात करते हैं, जिसमें आप इराक की बात करते हैं, जिसमें आप ईरान की बात करते हैं। तुर्की के दक्षिण पूर्व में चले जाइए, मैप में आप देखिए तो आपको ये देश दिखाई देंगे, सीरिया, इराक और ईरान। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने तुर्की को क्यों ये बताया कि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आईएसआईएस है वो इराक, सीरिया, यही ज्यादा सक्रिय है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और तुर्की के का बॉर्डर यहां से यहां मिलता है। आपको मालूम होगा कि एग्जैक्ट थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं कि एक विमान शायद रशिया ने भेजा था या किसने, जो तुर्की ने मार गिराया था और वो ब्लैक सी, अरब सागर में वो गिरा था, आपको शायद ध्यान हो, अरब सागर में, यानी कि तुर्की अरब सागर के किनारे स्थित है। इससे भी आपको ये बात पता लग जाएगी जब आप मैप देखेंगे। दोस्तों, तुर्की के बारे में जो भारत के पुराने रिलेशन है उसको आप खिलाफत मूवमेंट के तहत समझ सकते हैं। इतिहास की थोड़ी सी बात है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, आपको मालूम है कि 1919 में खत्म हो गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक तरफ तो इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश थे और जो दूसरा पक्ष था उसमें आपको मालूम है कि ये जर्मनी वगैरह राष्ट्र थे और तुर्की भी इसी में था। आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन वगैरह, ब्रिटेन अमेरिका के ग्रुप की जीत हुई थी और तुर्की पराजित हो चुका था। अब बट नेचुरली कि पराजित राष्ट्र अब ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में होता नहीं है। तो तुर्की क्या हुआ, तुर्की इस्लामिक देश था, वहां खलीफा होते थे और खलीफा वहां के इस्लाम धर्म के गुरु थे, सर्वोत्तम गुरु होते थे। आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे यहां भी जो तुर्की के सुल्तान आए या दूसरे भी जो सुल्तान होते थे शासन करने के लिए, जो मेडिवल इंडिया में आए हैं, कहा जाता था कि खलीफा से खुतबा पढ़वाया। इसका मतलब यह होता है जनरल सामान्य ज्ञान की दृष्टि से कि राजा के रूप में खलीफा ने मान्यता दे दी, यानी कि उन्हें राजा स्वीकार कर लिया गया, खलीफा की वो स्थिति थी। ब्रिटेन चूंकि जीत चुका था और तुर्की हार चुका था तो इसीलिए ब्रिटेन ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, कि नहीं अब खलीफा का कोई पद नहीं रहेगा। बट नेचुरल है कि ये इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ज्यादा एक चौंकाने वाली बात थी, और यूं कह लीजिए कि वो बिल्कुल बौखला गए और तुरंत फिर एक इसके खिलाफ आंदोलन जैसा शुरू हो गया। ब्रिटेन ने टर्की का विभाजन भी कर लिया, और जब खलीफा के पद को समाप्त किया तो न केवल टर्की के ही मुसलमानों को इससे आघात पहुंचा, बल्कि भारत के मुसलमान भी इससे बहुत ज्यादा दुखी हुए। हमारे यहां स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, 1920 के आसपास की बात ही है ये, असहयोग आंदोलन चल रहा था, हिंदू और मुसलमानों में थोड़ा सा दुराव की भी शुरुआत हो गई थी, आप इसे पहले देख चुके होंगे, मुस्लिम लीग ऑलरेडी बन चुका था। तो गांधी जी और कुछ नेताओं को यह लगा कि यह अच्छा मौका है कि अगर इस जो मुसलमानों में जो आक्रोश है, अगर मुसलमानों का साथ दिया जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से और गहरे रूप से जुड़ सकेंगे, और उनको यह विश्वास होगा कि नहीं, हिंदू भी हमारा पक्ष ले रहे हैं, भारत भी हमारे साथ है, भारत के जो हिंदू हैं वो हमारे साथ है। तो फलस्वरूप गांधी जी ने फिर खिलाफत आंदोलन का एक तरीके से समर्थन किया, भारत में भी खिलाफत आंदोलन हुआ, और महात्मा गांधी और तिलक दोनों ने महात्मा गांधी ने इसको एक ऐसे मौके के रूप में देखा जबकि हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है उसको घनिष्ठ किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम फिर जानते हैं कि कुछ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, कुछ समय तक चला, फिर बाद में खत्म हो गया, लेकिन टर्की में हुआ ये कि 1922 में मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में जो टर्की के लोगों ने जो सुल्तान की जो राजनीतिक सत्ता थी वो छीन ली, यानी कि अब धर्म की सत्ता समाप्त हो गई। कमाल पाशा वहां के बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर माने जाते हैं, उन्होंने एक तरह से टर्की का आधुनिकीकरण करना शुरू कर दिया, एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाने के लिए, एक आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने यूरोप जैसे कानून लागू कर दिए, शिक्षा की जो राज्य व्यवस्था थी उनको अपने हाथों में ले लिया, नारियों को अधिकार, महिलाओं को अधिकार दे दिए, राज्य में नए नए उद्योग स्थापित किए जाने लगे, और इस प्रकार से एक नए टर्की के बनने की शुरुआत हुई। इसीलिए कमाल पाशा को वहां का जो आधुनिक स्वरूप है उसका एक प्रकार से जनक माना जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कथा जैसी बात सुनाऊंगा जो मैंने कहीं पढ़ी थी मित्रों, कि जैसे ही कमाल पाशा शासक बने उन्होंने कोशिश की, उनको लग रहा था कि जैसे पता नहीं लैंग्वेज उस समय अरबी या फारसी रही होगी, तो उनको लग रहा था कि इस लैंग्वेज से देश का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता, अंग्रेजी लागू किया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया और कहा कि ये बताओ कि हमारे टर्की में अंग्रेजी भाषा को लागू करने में कितना वक्त लगेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि 5 साल तो लग ही जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, आज से 5 साल पूरे हो गए, अंग्रेजी भाषा लागू की जाए। इस तरह के नेतृत्वकर्ता, इस तरह के लीडर कमाल पाशा थे। तो मित्रों ये एक लिंक है भारत और टर्की के बीच में खिलाफत आंदोलन का। तो मित्रों अब वक्त हो चुका है न्यूज एनालिसिस के बारे में इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है, मैं एक क्लिपिंग का उल्लेख जानबूझकर विशेष रूप से करना चाहूंगा जो इंडियन एक्सप्रेस का है। इसमें जो एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाने की जो बात है उस पर एक एडिटोरियल कमेंट है, इसे आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, आप देख रहे हैं कि यह एक बहस का मुद्दा अभी देश में बना हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आता हूं अपने ईमेल लिखने वाले दोस्तों पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसमें एक मित्र हैं अमित गुप्ता जो मुरैना मध्य प्रदेश से हैं, और दूसरे हैं अमित सिंह, आप भी अमित ही हैं, आप देहरादून उत्तराखंड से हैं। आप दोनों ने सूचित किया है कि आप afeis.com के एम्बेसडर के रूप में दूसरों को इसके बारे में सूचना दे रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अमित द्वय आप दोनों को मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे एक प्रशांत मवानी का मेल मिला है, राजकोट गुजरात से है। प्रशांत आपने जो सजेशन दिया है मैं उस पर काम कर रहा हूं, और उम्मीद है कि मैं आपके सजेशन को लागू करूंगा, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। तो मित्रों अब मैं कुछ अन्य दोस्तों के नाम ले रहा हूं। अभिषेक सोनी, विशाल जमशेदपुर झारखंड से, अंकित वर्मा, प्रिंस कुमार भागलपुर बिहार से, मनीष कुशवाहा धार मध्य प्रदेश से, आकाश कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश से, विवेक कुमार, ब्रह्म भास्कर अग्निहोत्री ग्वालियर मध्य प्रदेश से, पद्मेश ढोके चंद्रपुर महाराष्ट्र से, अजनार किरण चित्र ध्रुव और इरफान सैफी सुल्तानपुर दोस्त उत्तर प्रदेश से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।